ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी चैप्टर 9। भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सो को काफी समय पहले से ही बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हों, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोध आदि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्व आत्मा का राज्य स्थापित करें। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई ही नहीं है। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अतः जब अब देश का बंटवारा होने पर जो मार काट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, न ही उससे उन्हें कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बल्कि उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवा कर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्रायः एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते, केवल अपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो। इन बातों को सुनकर वह लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ, आप लोग उच्च हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हैं। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहाँ से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दें, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने, परमपिता परमात्मा शिव ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यान अवस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस, सेवा कार्य तथा परीक्षा भी है। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञवत्स सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किए। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट भी नहीं होगा, फिर भला आप क्यों जाते हैं? आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में नापाक अपवित्र काम नहीं होंगे, हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे, आप तो खुदा के हैं, आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्श जी तथा गुलाम हुसैन जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री, और डॉक्टर चौपत राम गिडवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आप यहाँ रहें, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे, परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवा अर्थ जाना ही है। उन दिनों कोई 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ, तो लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठा उठा कर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लाद कर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थीं। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की थी। यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हों अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हों। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। वे बार बार कहते थे कि कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियमानुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। वह सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। भारत में प्रवेश। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहां से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानयुक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और यह योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। शिव बाबा की आज्ञा के अनुसार जब राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यही आबू से शुरू हुआ। वही आबू जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने इस प्रकार कहा है, आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है, जहाँ ज्ञान की वही मशाल है जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतरण भूमि है, शालिग्राम दुलार भूमि है, यह सत धर्म प्रचार भूमि है, सत्युग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मा तन में आबू में शिव अवतार हुआ है, कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। जिसने नहीं ज्ञान यह जाना, शिव को अपना बाप न माना, नहीं आत्मा को पहचाना, सृष्टि चक्र का मर्म न जाना, उसका जीवन हुआ अकारत, यह अपने अनुभव का लेखा। जो कुछ सुना सुनाता हूँ बस, लिखता हूँ बस जो कुछ देखा। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सत्यों की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से प्रारंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1900 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग से पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर एक वर्ष उन्हीं लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों अथवा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल लिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों के पाठ का स्मरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन करने के लिए निकली। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण हो यह गीत गा रहा था। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग पवित्र बन पवित्र बन। सोने की सी नगरी था मेरा ये वतन, जहाँ पर था एक राज्य और एक धर्म, देवी देवताओं में था प्यार का चलन, न कोई दुख था ना कोई गम, पवित्र बन पवित्र बन। नया था जमाना वह, सुखी था संसार, यथा राजा तथा प्रजा और साहूकार। 16 कला संपूर्ण कहलाते थे वहाँ, पूज्य और पवित्र था सारा ही जहाँ, विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम। ओम शांति।